ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए इसरो के पुनः प्रयोज्य लैंडिंग वाहन पुष्पक के सफल परीक्षण के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान की निदेशक अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं विज्ञान संचारक विशेषज्ञ निमिष कपूर।
22 मार्च 2024 वह ऐतिहासिक तारीख है जब भारत ने पुनः प्रयोज्य या रियूजेबल प्रक्षेपण यान पुष्पक का सफल परीक्षण किया। कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में 22 मार्च को सुबह लगभग 7:10 बजे इसरो का रियूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक सफलतापूर्वक रनवे पर लैंड हुआ। रियूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफल लैंडिंग पर इसरो ने बयान जारी करके बताया कि रियूजेबल लॉन्च व्हीकल तकनीक के मामले में इसरो ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसरो के अनुसार प्रक्षेपण यान को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर द्वारा लगभग 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया और पूर्व निर्धारित मापदंडों को प्राप्त करने के बाद छोड़ा गया। यह मिशन अंतरिक्ष तक कम लागत में पहुंच को सक्षम करने के लिए पूरी तरह से पुनः प्रयोज्य लॉन्च व्हीकल के लिए आवश्यक टेक्नोलॉजीज को विकसित करने का एक बड़ा प्रयास है, जो इसरो को और देश को ये कामयाबी मिली है। प्रोफेसर सुब्रमण्यम, आप रियूजेबल प्रक्षेपण यान पुष्पक की दूसरी सफल उड़ान को किस तरह देखती हैं, जो अधिक जटिल परिस्थितियों में इसकी रोबोटिक लैंडिंग क्षमता के परीक्षण का हिस्सा था?
ये आरएलवी यानी कि रियूजेबल लॉन्च व्हीकल का दूसरा लैंडिंग एक्सपेरिमेंट था। इसका नाम है LEX-02 एंड मिशन वो चित्रदुर्ग से किया गया था। सेंटर का नाम है एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज और इसका मेन एम ऑफ दिस थिंग इज टू टेस्ट ऑल द ऑटोनोमस यानी कि पुष्पक यानी रियूजेबल व्हीकल ऑल द टेक्नोलॉजी उनका चेकिंग करने के लिए और किस तरह से वो ड्रॉप करने के बाद अपने आप उसका डायरेक्शन इट हैज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ लैंडिंग एंड देन ब्रेक करने के बाद उसका सेफ लैंडिंग होना चाहिए और उसके बाद स्टॉप होना चाहिए। दैट्स नॉट द ओनली थिंग, वो सब अंदर का जो इलेक्ट्रॉनिक्स ऑल द उपकरण जैसा होता है वो सब विदाउट ब्रेकिंग लैंड होना चाहिए। So it is not only about the re-entry of this vehicle, but it has to land properly and breakage होने नहीं चाहिए। So this is successfully tested for the second time at JTR Chitradurg।
और किसी भी रॉकेट मिशन में जो दो बेसिक चीजें होती हैं, उसको समझते चलें, रॉकेट और उस पर लगा स्पेसक्राफ्ट। रॉकेट का काम स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में पहुंचाना होता है और अपने काम को करने के बाद रॉकेट को आमतौर पर समुद्र में गिरा दिया जाता है, यानी इसका दोबारा इस्तेमाल नहीं हो पाता। लंबे समय तक पूरी दुनिया में इसी तरह के मिशन को अंजाम दिया जाता रहा है और यहीं पर एंट्री होती है रियूजेबल रॉकेट की, जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। रियूजेबल प्रक्षेपण यान आरएलवी पुष्पक के बारे में मैडम हमारे श्रोताओं को आम भाषा में समझाएं कि जो ये रियूजेबल रॉकेट की जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरह उसको आगे बढ़ाया जाएगा, इससे हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम को इसरो को क्या फायदा मिलने वाला है।
जो आपने जैसे बोला है कि अंतरिक्ष में स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में जो कुछ हम इधर से भेजते हैं तो रॉकेट के ऊपर छटके भेजते हैं, राइट? सो द रॉकेट हैज डिफरेंट स्टेजेस। पहला स्टेज होगा वो सॉलिड प्रोपल्शन जैसा, जस्ट टू स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम, राइट, जस्ट सिटिंग डाउन, सो चालू करने के लिए। उसके बाद सेकंड स्टेज शुरू होता है, उसके बाद थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। सो जैसे होता है कि वो स्टेज फायरिंग के बाद और फुल्ली यूटिलाइजेशन के बाद वो नीचे आ जाता है एंड दे कैन नॉट बी रीयूज, दे आर फॉलिंग इन टू द ओशन। उसके बाद ये भी होता है कि ऊपर का जो स्टेज है फर्स्ट स्टेज फोर जैसा, वो स्पेसक्राफ्ट को ऑर्बिट में डालने के बाद उधर ही रह जाता है, तो उसका भी यूज नहीं करना चाहिए। तो अभी वो नेक्स्ट 10 इयर्स जो होने वाला है कि बहुत सारे रॉकेट भेजना पड़ेगा और बहुत सारे चीजें लोअर ऑर्बिट में भेजने पड़ेगी, यानी कि गगनयान जैसा मिशंस, और इफ यू हैव इंडिया स्पेस स्टेशन होता है तो सब वो रॉकेट भेजना पड़ता है। तो टू मेनी ऑफ देम गोइंग देयर एंड वेस्टिंग द मटेरियल इज नॉट द ग्रेट थिंग टू डू। तो हम कैसे ये रीयूज कर सकते हैं इसके बारे में दिस आरएलवी मिशन इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। क्या होता है कि आपको यो या सेकेंड स्टेज या थर्ड स्टेज जो फुल्ली नहीं बर्न नहीं होता तो उसका भूतल तक वापस लेके टू ब्रिंग इट बैक, इट इज हाउ डू वी डू इट। जो चीज हम इधर से भेजते हैं उनको उधर पहुंचने के बाद इसको वापस आना पड़ेगा और वापस आने से हमको फिर यूज कर सकते हैं. तो दिस इज द मेन थिंग. सो यू कैन सेंड इट अप एंड देन यू ब्रिंग इट बैक द सेम थिंग. सो यू वॉन्ट टू रिप्लेस एन एक्सपेरिमेंट और चीजें भेजने चाहते हैं. सो ये सब ये रीयूजेबल व्हीकल से होगा. इट इज ब्रिंगिंग फ्रॉम द ऑर्बिट. दे आर नॉट ब्रोकन बिकॉज इट नोज हाउ टू लैंड प्रॉपरली सो दैट द स्पेसक्राफ्ट या एनी उपकरण विच इज कमिंग बैक इट इज नॉट ब्रोकन एंड इट इज सेफली ब्रॉट बैक. सो रीयूजेबल री एंट्री ऑल दैट इज टूगेदर टेस्टेड.
जी और बिल्कुल इस रीयूजेबल रॉकेट की टेक्नोलॉजी को जानना भी बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि जिस रॉकेट से आप कोई भी सैटेलाइट या ऐसा बॉडी आप भेज रहे हैं अपने ऑर्बिट में और उस रॉकेट को आप सुरक्षित तरीके से पूरे ऑटोनोमस तरीके से आप पृथ्वी पर वापस ला रहे हैं तो अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है. और रीयूजेबल प्रक्षेपण यान RLV पुष्पक जिसको नाम दिया गया है जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं इसरो की सबसे तकनीकी रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण जो प्रोजेक्ट हम कहेंगे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट उसमें से ये एक है. और इसका जो मकसद है उद्देश्य है वो पूरी तरह से रीयूजेबल जो प्रक्षेपण यान है उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना जिससे अंततः अंतरिक्ष अभियानों की लागत कम हो जाएगी. तो यहां पर आपसे मैडम ये समझना चाहेंगे जो इसकी खास टेक्नोलॉजी बनाई गई है जो एक ऑटोनोमस बनाया गया है और ये हमारे कंट्रोल पर काम करेगा और ये हमारे हिसाब से सैटेलाइट को उसके कक्षा में छोड़ने के बाद ऑर्बिट में करने के बाद ये वापस धरती पर आ जाएगा. तो ये क्या खासियत है इस टेक्नोलॉजी में अगर आप उसको आसान शब्दों में बता पाएं.
तो अभी जो टेस्टिंग हुआ है ये 4.5 किलोमीटर ऊपर से हुआ है. आई मीन ऑल्टीट्यूड ऑफ 4.5 किलोमीटर. और ये जब ये चिनूक हेलीकॉप्टर इसने छोड़ा है वो 4 किलोमीटर आगे भी है. तो चुनौती ये है कि ये इसको पता चलना होगा कि कहाँ पे है रनवे और कितना तेजी से ये नीचे आ रहा है. तो छोड़ने के बाद इसका ऑटोनोमस बॉडी का मेजरमेंट करना होगा कि इसका स्पीड कैसा है कितना ब्रेक करना पड़ेगा और जितना ब्रेक करने से सेफ लैंडिंग होगा कहाँ पे लैंड करना है कैसे लैंड करना है किस स्पीड से लैंड करना है. तो ये सब देयर इज नोबडी टेलिंग द RLV मिशन दैट This is the way you have to do it. No, nobody is telling it. It is autonomous. It's like a self-driving car. So, आपने आप पता चलता है कि कितना स्पीड है कितना ब्रेकिंग करना पड़ेगा कहाँ लैंड करना पड़ेगा किस साइड से लैंड करना पड़ेगा उल्टा नहीं करने का है सीधे से करना है. तो ये सब जानने के बाद ठीक से करना पड़ेगा. तो ये सब टेक्नोलॉजी है वे अपने आप मेजरमेंट करके डिसीजन भी लेता है. दैट इज वाई इट इज ऑटोनोमस एंड द इंडिविजुअल टेक्नोलॉजी इज देयर मेजरमेंट सेंसिंग इज देयर. सेंसिंग के बाद डिसीजन भी करना है इसको अपने आप. तो डिसीजन करके सेफ लैंडिंग करके ये सक्सेसफुल बनी है अभी तक.
यानी हम ये कह सकते हैं कि आज भारत के पास जो ऑटोनोमस लॉन्च व्हीकल है पुष्पक वो एक तरह से हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता और हमारी मशीन लर्निंग का एक शानदार एग्जाम्पल हमारे सामने आया है.
इफ यू एक्चुअली सी दिस ऑटोनोमस सिस्टम इज इन प्लेस इन मोस्ट ऑफ द इसरो एफर्ट्स. जो लैंडिंग हुआ था वो भी ऑटोनोमस था. अभी तो रॉकेट का टेक ऑफ जिस होता है ना तो काउंटडाउन तो वो भी ऑटोनोमस है. सो सेल्फ डिसीजन इट इज चेकिंग एवरीथिंग एंड इफ एवरीथिंग इज ओके दी ऑटोमेटिकली दी काउंटडाउन इज कंटिन्यूइंग. आई मीन उधर बैठे जो लोग ना तो देखे बोलना है कि नहीं 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 ये ठीक नहीं है रुको इसको ऐसे नहीं करने का है. वो सिस्टम खुद ही चेक करता है कि ये ठीक है तो चले जाओ नहीं है तो रुको. तो डिसीजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होता है और चेकिंग से होता है.
हमारा जो ये रीयूजेबल प्रक्षेपण यान पुष्पक जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं अंतरिक्ष में जाने वाला एक ऐसा वाहन जिसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है. और इसमें जो सबसे महंगे उपकरण है वो सबसे ऊपरी भाग में लगे होते हैं और इस भाग को सुरक्षित वापस लाने से काफी बचत होगी और भविष्य में इस वाहन का इस्तेमाल अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट में ईंधन भरने या उन्हें वापस लाकर उनके मरम्मत या रिपेयरिंग करने के लिए भी किया जा सकता है. तो यहाँ यह समझना जरूरी है कि किस तरह से ये एक ऑर्बिट में सैटेलाइट को फ्यूल दे पाएगा और कैसे सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट से भी वापस लाने का काम करेगा. ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो ये कहा जा रहा है कि पुष्पक ऐसा कर सकता है. मैडम इसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे.
अभी तक टेस्टिंग जो हुआ है वो ऑटोनोमस लैंडिंग के बारे में हुआ है लेकिन जो बाकी है वो तीसरा टेस्टिंग जो होता है वो ऑर्बिट में होगा. तो उधर और टेक्नोलॉजी का टेस्टिंग भी होना चाहिए क्योंकि आपका जो ये व्हीकल में जो लेके गया है वो ऑर्बिट तक उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा ना. तो उसका टेक्नोलॉजी भी टेस्टिंग करना पड़ेगा और जो ये वापस ले आ रहे हैं उसका ट्रांसफर करके आना है, तो जो ऑर्बिट में टेक्नोलॉजी चाहिए ये सब करने के लिए वो भी टेस्टिंग करना चाहिए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप वो टेस्टिंग जा रहा है। तो अभी तक इतना ही हुआ है, लेकिन आगे चल के ये सब टेक्नोलॉजी का भी टेस्टिंग हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप दे विल डू दैट एंड इट कैन बी कम्प्लीटली यूज्ड।
मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा कदम है जो इसरो ने, भारत ने अंतरिक्ष के मलबे को कम करने के लिए उठाया है। जैसे कि आपने बताया कि ये भविष्य में टेस्टिंग होगी कि कैसे सैटेलाइट को भी वापस लाया जाए, तो अंतरिक्ष में हमारे पास सैटेलाइट से संबंधित बहुत सारा जो डिब्रिस है, जो कचरा है, मलबा है, वो भी इकट्ठा होता जा रहा है, तो वो भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और भारत अंतरिक्ष के मलबे को कम करना चाहता है और पुष्पक भी उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। अंतरिक्ष में कचरा कम करने की दिशा में आप इसको कैसे देखती हैं?
तो अभी जो हो रहा है वो नीचे का स्टेजेस, रॉकेट का नीचे का स्टेजेस जो है ना वो समुद्र पे गिर जाता है, लेकिन ऊपर का स्टेज जो होता है वो ऑर्बिट में पड़े हुए हैं, और उसके अलावा जो सैटेलाइट वो उधर चल रहे हैं वो भी है, और वो सैटेलाइट उसका काम हो चुका है और हमारा कॉन्टैक्ट भी नहीं है उस सैटेलाइट से। तो ये सब बहुत चीजें हैं और ये सब लो अर्थ ऑर्बिट में है, वो 300 टू 600 किलोमीटर के बीच में है, तो बहुत मुश्किल है कि कहाँ पे ये और हमारे ऑर्बिट में न पड़े और यू डोंट वांट एनी एक्सीडेंट आउट देयर। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज जो हम अभी भेजने वाले हैं उनका जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का वो ही रहे उधर, वो रॉकेट का पीस नीचे आ जाए और यूज करने के बाद वो सैटेलाइट होता है वो भी नीचे आ जाए। तो इसका जो तरीका होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्लीमेंट। नाउ कैसे नीचे आएगा, वन थिंग इज जस्ट बर्न इट अप एंड पुट इट इन द ओशन और रीयूज करने के लिए। तो ये जो हो रहा है वो रीयूज करने का तरीका है।
बिल्कुल, और वो उपयोग हो चुके सैटेलाइट जब नीचे आएंगे तो वो भी एक बहुत बड़े अपने आप में कौतूहल पैदा करेंगे और हमारे जो नई जनरेशन है, बच्चे हैं, वो भी उसको म्यूजियम में देखने जा पाएंगे, टच एंड फील कर पाएंगे कि सैटेलाइट जिसने हमें सेवाएं दी हैं, हमारी रिमोट सेंसिंग लेके कम्युनिकेशन का काम किया है, उसको हम देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं। तो बहुत सारा मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है अब इस मामले में। और इसरो चीफ एस सोमनाथ ने बताया है कि भारत के अंतरिक्ष मिशन को किफायती बनाने के लिए पुष्पक लॉन्च व्हीकल को भारत में बनाना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कदम था, और लॉन्च व्हीकल में सबसे महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट होते हैं, और ऐसे में दोबारा इस्तेमाल होने वाले लॉन्च व्हीकल बनने से यह व्हीकल मिशन की सफलता के बाद पृथ्वी पर सुरक्षित उतर सकेगा और अगले मिशन में फिर से इसी लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो एक बहुत बड़ी कामयाबी जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि अमेरिका और रूस जो विंड स्पेस शटल पर अपना काम बंद कर चुके हैं और इसरो इस पर काम करने जा रहा है नई टेक्नोलॉजी के साथ में। जैसा कि स्पेस टेक्नोलॉजी के कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अमेरिका और रूस की जो टेक्नोलॉजी जो थी वो 20वीं सदी की थी, यानी पुरानी टेक्नोलॉजी है, और इसलिए उन्होंने अपने इस पर काम बंद कर दिया है। लेकिन इसरो जिस टेक्नोलॉजी से विंड स्पेस शटल बना रहा है वो 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी है, ऐसे में इसरो का शटल अमेरिका रूस के शटल की तुलना में एडवांस होगा, बेहतर होगा। इस विषय में आपकी क्या टिप्पणी है मैम?
यूएसए में क्या हो रहा है कि प्राइवेट सेक्टर का वो लॉन्चिंग है होता है ना, तो एलन मस्क का स्पेसएक्स और जेफ बेजोस का वर्जिन अटलांटिक एक्सेट्रा होता है ना, उनका जो रीयूजेबल व्हीकल है वो नीचे वाला री एंट्री व्हीकल्स है, उसका तरीका डिफरेंट है और हमारा तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट है। देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज विच आर एम्ड एट ब्रिंगिंग बैक द री एंट्री व्हीकल्स।
तो रीयूजेबल प्रक्षेपण यान आरएलवी पुष्पक की सफलता के बारे में इस चर्चा के लिए प्रोफेसर सुब्रमण्यम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे इसरो के पुनः प्रयोज्य लैंडिंग वाहन पुष्पक के सफल परीक्षण के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान की निदेशक अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे विज्ञान संचारक विशेषज्ञ निमिष कपूर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSDTalks@gmail.com और व्हाट्सएप नम्बर है 9289904044।